नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को, वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित JECC में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई SIR प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में BLO की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर BLO और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। NEET UG 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, SOG और IB पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही CRPF की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि PM ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान उन लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही SMS स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जल महल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलूम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।